يقضي بحضرهم واحضرهم تذكر الرساله يفقه قولي امين يا رب العالمين. اجتماعیت اور بیعت کی اہمیت یہ موضوع ہے آج کا. تمیزی باتوں میں ہم کئی چیزیں سمجھ چکے ہیں. پہلی چیز یہ کہ اسلام دین ہے, محض مذہب نے دین اور مذہب نے کیا فرق سمجھا ہے؟ مذہب جو ہے صرف انفرادی کوشش سے تعلق رکھتا ہے, اور یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مذہب جو ہے پرسنل میٹر ہے کیونکہ اس کا تعلق انفرادی سے, جبکہ دین جو ہے وہ زندگی کے تمام گوشتوں سے متعلق ہوتا ہے اور یہ پوری زندگی کا حاصل ہے. تو اسلام محض مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے, اور اس لیے اسلام پر بحثیت دین عمل کرنے کے لیے انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کے احکامات کو اختیار کرنا ضروری ہے. جس طرح کلمہ پڑھ کر ایک انسان جو ہے ایک انڈیویجول اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے ڈال دیتا ہے, رکھ دیتا ہے, اسی طرح اسلامی اجتماعیت بھی ہے, اور پوری اجتماعیت جو ہے وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے جو ہے رکھ دیتی ہے, یعنی اللہ کی مرضی کے سپورٹ کر دیتی ہے. یہ ہے اسلام جو ہے وہ اجتماعی لیول پر. اسی طرح جو ہے یونیورسل ٹروتھ کی بات آتی ہے, یعنی حالت یہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نتیجہ تیز کام خواہ وہ مثبت ہو یا منفی بغیر اجتماعیت کے نہیں ہوتا. یہ ہم سمجھ چکے ہیں. معمولی سی پینسل آپ نے دیکھنی ہے تو وہ بھی جو ہے کئی لوگ مل کر جب کام کرتے ہیں تو معاملات چلتا ہے, ورنہ ایک آدمی چاہے کہ وہ اکیلے سارے مراحل کر لے تو یہ ناممکن ہوگا. کچھ لوگ چاہیے جو جا کے پہاڑوں سے سیسا نکالے, کچھ لوگ چاہیے جنگلوں سے لکڑی کاٹے, پھر کچھ چاہیے جو لکڑی اور سیسے سے پینسلیں بنائے, پھر کچھ لوگ چاہیے جو انہیں جا کے مارکیٹ کرے, پھر جو ہے کام چلتا ہے. اگر یہ سارے کام ایک ہی آدمی کرنا چاہے تو شاید ایک پینسل بنانے میں اسے جو ہے بہت زیادہ خرچ بھی کرنا پڑے اور بہت وقت بھی لگے, اور ہو سکتا ہے پھر بھی صحیح پینسل بن نہ سکے. ہمیں معلوم ہے کہ کوئی سا بھی اگر کام کرنا ہے اس معاملے میں تو اجتماعیت کی ضرورت ہے, اور پازیٹیو تو ایک طرف ہے, منفی کاموں کے لیے بھی اجتماعیت کی ضرورت ہے. آپ کو اب پتا ہوگا کہ ابھی جو پورے گینگز ہوتے ہیں مجرموں کے بھی, اور وہ اتنے آرگنائز ہیں کہ اسی وجہ سے ان کی بچت ہو جاتی ہے. جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پکڑ لیے جاتے ہیں, لیکن جو آرگنائز ہو کر کام کرتے ہیں تو انہیں پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں اب یہ مافیا کہلاتے ہیں, انڈر گراؤنڈ ورلڈ کہلاتا ہے, انڈر ورلڈ کہلاتا ہے پورا, اور ان کا پورا جال اور نیٹ ورک پھیلا ہوا ہوتا ہے, اور یہ مل جل کر کام کرتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کی سپورٹ حاصل رہتی ہے اور کام بھی جلدی سے ہو جاتا ہے اور جو ہے یہ پکڑے بھی جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اجتماعیت ہر اس میں جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے, چاہے کام اچھا ہو یا برا ہو. اسلام میں اجتماعیت کی خصوصی اہمیت نظر آتی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام میں اہم امور زندگی اور شعائر دینی کی ادائیگی کے لیے اجتماعیت اختیار کرنے کی تاکید نظر آتی ہے. تمام معاملات نہیں ہیں لیکن اہم امور زندگی جتنے ہیں جن کا تعلق شعائر دینی سے جو ہے خصوصاً ان کے لیے جو ہے ہمیں نظر آتا ہے اجتماعیت جو ہے اس کا معاملہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ہی اجتماعیت کے ساتھ کہی ہے. اب آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ نہا رہے ہیں, آپ جو ہے ملنے ملانے جا رہے ہیں, اس میں آزادی ہے, لیکن جو دینی شاعر ہیں ان کی جو ہے اجتماعیت شرم لازم نظر آ. مثلاً آپ سفر پر نکلے تو ہدایت کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے تین افراد سفر پر نکلے تو چاہیے کہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا دیں. تو حالانکہ یہ عام معاملہ ہے, سفر تو کر رہی ہے آدمی, لیکن دین کا مزاج کیا ہے اس میں بھی اکیلے اکیلے نہ رہو بلکہ جماعت کی صورت میں جو ہے یہ سفر کرو. تین آدمی ہیں تو ایک کو امام اپنا بنا دیں, اب اس کی جو ہے اطاعت ہے. اسی طرح تمام ارکان اسلام کو دیکھنے اس میں اجتماعیت کی روح آپ کو لگ رہی ہے. نماز جب چاہتے تو اللہ تعالیٰ بس کہہ دیتے کہ فرض نماز ہے, پانچ نمازیں ادا کر لیں, سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ادا کر لیتے, لیکن ایسا نہیں ہے. مردوں کو حکم ہے کہ وہ مسجد آئیں اور جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا کریں, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کروایا, کہا کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہیں ہوتا تو میں جو ہے خود جاتا اور وہ لوگ جو جماعت میں شریک نہیں ہو رہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو یہ اجتماعیت بغیر کسی طرح عذر کے بلا وجہ جماعت ترک کر دینا یہ بہت بڑا غیر گناہ ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نماز بھی جماعت کے ساتھ, روزہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ سال میں میں 30 روزے رکھ لوں लेकिन ऐसा नहीं किया। एक महीना मुकर्र किया और तमाम मुसलमान मिलकर उसी उन्हीं औकात में उन्हीं दिनों में रोजा रखते था। तो इस्तेमालियत की फिक्र है। इसी तरह ज़कात, आपको पता है कि अगर ये ज़कात का मामला जो हमवाले दायरा है उसमें जो दी जाएगी और यह हुकूमती इदारा होगा जो जो है जा जाके जो है वो ज़कात वसूल करेगा, वो भी एक नज़म के तहत होगा और वो इदारा जो है वो एक साल में एक वक्त मुकर्रर होगा जिसमें जाकर जो है वो ज़कात वसूल करेगा। इसी तरह हज और हज के दौर में मालूम है कि अब जो है माशाल्लाह जो है लाखों लोग पहुँचते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है सऊदी हुकूमत के लिए बज़ाहिर अगर हम सोचें कि वो जो है वो हर महीने एक एक मुल्क को बुलाता रहता, लोड कम रहता और लोग जो है तरह पूरे साल चलता रहता, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे पसंद नहीं किया बल्कि आज भी जो हज का मामला हो पूरी दुनिया के लोग एक ही वक्त में इकट्ठे हों तो उसके लिए मखसूस अयाम रखे जनज पूरी दुनिया के लोग उन्हीं अयाम में आकर हज की ये इबादत अदा करते हैं, फर्ज इबादत अदा करते हैं। तो अगर आप गौर करें अरकान इस्लाम तो ये सब के सब इनमें इज्तमाइयत की हुई, बगैर इज्तमाइयत के जो है ये इसकी अदायगी नहीं होती। बात तो इनमें ऐसे हैं जो अगर आपने जमात से नहीं अदा किया तो वो होंगे जैसे जुमे की नमाज है, नमाज जुमा और नमाज रमजान, अगर जमात निकल गई तो और इंडिविजुअल हो ही नहीं सकती, जमात के साथ ही है। जुमे की जमात निकल गई तो आप दुआ की फर्ज अदा करेंगे चार रकात, अब वो दो रकात जुमा आप अकेले नहीं कर सकते। इसी तरह ईद की नमाज निकल गई तो आप इस पर राजी खड़े हो कि आप ईद की नमाज नहीं अदा करें, तो वो है ही जमात के साथ, उसके बगैर मुमकिन ही नहीं। अब इज्तमाइयत दो, यहाँ पर हम दो तरह से टॉपिक कवर करेंगे। एक तो हम देखेंगे कि इज्तमाइयत की अहमियत कुरान हदीस और उसके बाद सहाबा किराम और हमारे इस्लाम में क्या रही है। फिर दूसरा हम इसका दूसरा रूप देखेंगे कि अगर इज्तमाइयत की वाकई अहमियत है इस्लाम में उसका जोर है तो ये इज्तमाइयत की बुनियाद क्या हो, उसके असास क्या हो, क्या उसका इज्तमाइयत का ताना बाना क्या होगा, क्या उसकी शक्ल होगी, किस शक्ल में ये इज्तमाइयत हो इतना। तो पहले इज्तमाइयत की अहमियत जब ये समझ आ जाएगा कि वाकई ये इज्तमाइयत जो है मतलूब है, फिर वो इज्तमाइयत किस तरह की हो उस पर हम बात करें। आइए पहले कुरान से कुछ सीखते। कुरान हकीम इंफरादी और इज्तमाही हर सतह पर अमल के लिए इज्तमाइयत अख्तियार करने का हुक्म देते हैं। इंफरादी जिंदगी में अल्लाह का तकवा अख्तियार करने का हुक्म है, जैसे सूरह तौबा आयत नंबर 119 में कि कूनू मा सादिकीन या अय्युहल लदीना आमनू तक्कुल्लाह व कूनू मा सादिकीन। तो आप क्या कह रहे हो कि ईमान है अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, हो जाओ सच्चों के साथ। यहाँ पे आला के मामला तकवा का इंफरादी है, लेकिन कहा कि फिर भी तकवा हासिल करने के लिए सच्चों का साथ अख्तियार करो, उनकी इज्तमाइयत अख्तियार करो। और बात हकीकत है और ये पहले दोहरा भी चुके हैं कि आपने कुछ भी महसूस किया होगा, एक आदमी अकेला होता है और दो चार साथियों के साथ होता है तो बड़ा ऐसे क्यों उनके सोच में तरीके में फर्क पड़ जाए। आप अकेला आपको बाजार से गुजरता हो तो कुछ और एटीट्यूड होगा, कुछ और जो है तवज्जो होगी, लेकिन कुछ नेक साथी भी साथ हो तो वो सफर जो है और उसकी कैफियत हो जाती, बहुत सारी जो है शैतानी वसवसों से आदमी बच जाता है और नेक सोबत सोबत जितनी होती है उतना जो है वो शैतानी वार से बचा रहता है। इसी तरह जो है वो ये भी हमारे सामने आया कि अगर आदमी अकेले जिंदगी बसर कर रहा है तो कौन उसकी इज्जत करेगा, सही आ जाता है। अगर वो बिगाड़ की तरफ आई हो जाए तो कौन है उसे रोकने वाला, रोकने वाला कोई बात सोच करने वाले ही नहीं है, कोई जो है तवज्जा दिलाने वाले ही नहीं। लेकिन जब इज्तमाइयत में साथ होता है और अक्सर ऐसा होता है जो लोग इज्तमाइयत में उन्हें अंदाजा है, एक साथी में थोड़ी सी कमी आने लगती है तो वो अकेला नहीं होता, दो चार लोग महसूस कर रहे हैं तो उसे तवज्जा दिलाई जाती है, भाई आपका जो है मामला जो है पहले बजट में आप नजर नहीं आ रहे, दो चार दिन हो गए क्या मामला है। तो इज्तमाइयत में ये होता है कि आदमी को अभी इतनी बुराई बड़ी नहीं होती कि लोग सोचने वाले बच जाते और लोग तवज्जा दिला देते हैं, फलूस के साथ जो उसकी इतना की भी कोशिश करते हैं। और आदमी अकेला है तो किसी को क्या करता है, जो मर्जी करे जो मर्जी ना करे कोई उसे जो है इतना कराने वाला और मुतवजा कराने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जमाती जिंदगी का ये मामला है। फिर से आदमी मोटिवेट होता है, चार दोस्त साथ हैं या आप समझे एक जमात में कई साथी साथ हैं, सब साथ साथ जमात में आए लेकिन एक आदमी आगे निकल जाए तो बाकी तीन मोटिवेट होते हैं कि जब वो कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी आगे करूँ, उससे भी तुलते याद करनी रवि याद करूँ, उसकी नमाजें बेहतर हो रही है, मैं भी करूँ, वो दावत का काम ज्यादा कर रहे हैं मैं भी करूँ, तो ये भी कम्पिटिशन का माहौल है। वरना इंतराजियत में जो है से वो आदमी जो है तरह से तदुतर दीन के मामले में फिर वो जो है उसे कोई बातचीत करने वाला आगे बढ़ाने वाला नहीं। तो इस तरह जो है तबाहियत में आदमी की सलाह भी इतलाह भी होती रहती है और उसका तस्कीर या बयानी का मामला भी होता रहता है, मोटिवेशन भी उसे मिलती है। दूसरों को अल्लाह की बंदगी की दावत देने के हवाले से तो खसूसन हमने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 104 पढ़ी थी, कोई बताएगा? हाँ नहीं, वो तो सूरह आल इमरान की 110 है। وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک گروہ تو ایسا ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ تو یہ جو ہے بہت اہم آیت ہے، اور یہ دعوت کے سلسلے میں تھی۔ ایک تو دعوت ہر آدمی پہ ویسے ہی فرض ہے کہ دین کی طرف دوسروں کو بلائے، لیکن اس میں خصوصاً یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایک جماعت تو ایسی ہوئی ہو جو خیر کی طرف بلائے۔ خیر کے بارے میں کیا ہم نے سمجھا تھا؟ سورہ نار آیت نمبر 30 کے حوالے سے قرآن کے لیے، جب قرآن نازل ہوا تو پوچھا کہ ابھی تم پر کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، تو وہ مومنوں کا جواب کیا تھا؟ فاضو خیر روئے گام پر خیر نازل ہوا۔ وہ خیر جو ہے قرآن کے لیے آیا، قرآن کی طرف دعوت دینے والے، بھلائی کا حکم کرنے والے، برائی سے منع کرنے والے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایک باقاعدہ جماعت بھی ہونی چاہیے۔ اور آگے نظر کا سلوک ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ تو یہاں سے بھی جماعت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، نہ صرف انڈیویجول زندگی میں بلکہ انڈیویجول تقویٰ کے لحاظ سے بھی حکم ہو رہا ہے کہ کونوا صادقین، اور دعوت کا جو اگلا کام ہے اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے۔ پھر سورہ اثر میں یہاں پر نجات کے لوازم کا ذکر ہے، وہاں تواسی کا ایک لفظ آیا ہے۔ تواسی کے معنی کیا سے سمجھے؟ کون سے بات سے؟ باب تفاعل سے۔ اور باب تفاعل کے اندر دو معنی اضافی ہیں، ایک تاکید سے کسی کام کا کرنا اور دوسرا مل جل کر کرنا، اکیلے کے معنی نہیں ہے تواسی، یعنی مل جل کر حق کی طرف لوگوں کو بلانا۔
چار کام ہمارے سامنے ایسے کیا کریں
کہ جو یہ چاروں کام کرے گا وہ دوزخ سے بچ جائے گا یا اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور یہ ہم نے سمجھا تھا، یہ کوئی عظیم کامیابی نہیں ہے، یہ منیمم کامیابی، پاسنگ مارکس ہے، وہ 40% مارکس ہے کہ ناکامی سے جس سے آگے بچ جاتا ہے۔ اور چاروں کام کرنے لازمی ہے۔ چاروں کام کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا آغاز ہی بڑا جو ہے وہ توجہ دلانے والے انداز سے کیا، بس آپ تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی سطح، ان انسان لطے ہو، یقینا تمام انسان واقعی خطا رہے۔ تو یہ جو ہے درمیانی آیت، یہ آیت نمبر 2، اور عدد کے لحاظ سے بھی درمیانی ہے اور مضمون کے لحاظ سے بھی سب سے درمیان۔ اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کے لیے ہلاکت کا فیصلہ کروا دیا، اور پھر وہ تیسری آیت ہے جس میں تھوڑی امید کی کرن ہے کہ بھائی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں، نقصان میں۔ پھر فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور آپس میں مل جل کر جو ہے حق بات کی تاکید کی اور آپس میں مل جل کر صبر کی تلقین کر۔ تو یہاں یہ بات جو ہے حق سے آپ اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ یہ جو حق بات کی تلقین ہے اور صبر کی تاکید ہے اس کو مل جل کر کرنے کا حکم۔ تو یہ مل جل کر ہوگا جب ایک جماعت میں گروئے ہوں گے، جماعتی زندگی کو اختیار کریں۔ سب سے بڑا حق ہے جس چیز کے اللہ کی زمین کا اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو، یعنی اقامت دین۔ حق ہم نے سمجھا تھا کہ چھوٹا بڑا بہت کچھ ہو سکتا ہے، بچوں کو بھی آگے روک سکتا ہے، یہاں نہ کھیلو وہ مناسب جگہ چلنے کی وہاں کھیلو، یہ بھی حق ہے۔ لیکن سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کی زمین ہے، یہاں پر اللہ کا حکم ہونا، اور جتنا بڑا حق آپ بیان کریں گے اتنا بڑا اتنی بڑی مخالفت ہے۔ بچوں کو ٹوکیں گے تو ان کی طرف سے بھی مخالفت ہے، وہ بھی اپنی جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے، لیکن کسی بڑے وڈیرے کو تو اس سے روکیں گے وہ اسی طرح آپ کی مخالفت کریں گے۔ اور پھر پورے نظام سے کہیں گے نظام ہی غلط ہے تو وہ نظام سے آپ کی جو ہے اسی طرح مخالفت کریں گے. تو جتنا بڑا حق آپ بیان کریں گے اتنی بڑی مخالفت کا معاملہ ہوگا. اقامت دین کی جدوجہد کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ سب کی آیت نمبر 4، اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے دین کے غلبے کے لیے جنگ کرے. لیکن جنگ کس طرح ہو؟ انڈیویجول علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ جو ہے منظم ہو کر گویا کہ سیتا پلائی ہوئی دیوار. سیتا پلائی ہوئی دیوار کیا ہوتی ہے؟ ایک تو آپ دیوار تعمیر کرتے ہیں پھر اسے جو ہے اس کے اوپر گھاس کی ایک پوری سینٹ جس کا لگا دیتے ہیں جسے کہا جاتا ہے ری انفورس وال جو ہوتی ہے. ری انفورس کانکریٹ وال کی ہوتی ہے اور یہاں تو کانکریٹ کے اوپر شیشے کا بتایا جا رہا ہے فولادی دیوار. دیوار بنا کے پھر فولاد پگھلا کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے کہ وہ یک جان ہو جائے. تو یہ جو ہے یہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کا جو ہے اظہار فرما رہے ہیں کہ ایسے مومن لوگ قتل ہیں جو اللہ کی راہ میں سیتا پلائی ہوئی دیوار کی مانند جو ہے کریں. اور یہ سیتا پلائی ہوئی دیوار اسی وقت بنے گی جب اینٹیں آپس میں ملی ہوئی ہوں. اگر وہ اینٹیں علیحدہ علیحدہ کھڑی ہوئی ہوں تو وہ تو پھر سیتا پلائی ہوئی دیوار ہی ہوں. تو یہاں سے بھی اجتماعیت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جماعت مضبوط جماعت چاہیے ہمیں جو سما اطاعت کی پابند ہو اور بالکل نظر کے ساتھ. اسی طرح سورہ مائدہ کا چوتھا رکوع جو ہے اس میں جو ہے اللہ کے دو جلیل القدر رسولوں کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام. اور ان دونوں کی شدید خواہش ہے اللہ کا دین غالب ہو جائے. لیکن یہ دین کیوں نہیں غالب ہوا؟ قرآن کیا چیز ہائی لائٹ ہے؟ اور یہ جو قصے انبیاء کرام کے رسولوں کے قصے ہیں تو وہ قصہ کوئی نہیں ہوتی. اس میں بہت بڑی سبق آموزی ہے ہمارے لیے عبرت کا معاملہ ہے. اور ان قوموں کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی ہے اس کی وجہ ہے اس کی اہمیت ہے. مطلب بہت سارے معاملات ہوئے ہیں لیکن ایک واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا تو اس کی وجہ ہے کہ کیوں ہائی لائٹ ہے. تو یہاں پر کیا وجہ ہائی لائٹ کی گئی؟ کیوں نہیں دین غالب ہوا؟ ہاں وہاں جب کہا گیا کہ بھائی یہ شہر ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور تم غالب ہو جاؤ گے. لیکن قوم نے کیا کہا؟ فَذَا حَمْتَا وَرَبَّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَائِدُونَ. بتاؤ آپ کے رب جائیے کتاب کی جنگ نہیں بیٹھے. تو اجتماعیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی. لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو اس وجہ سے گویا مضبوط جماعت اگر نہیں ہوگی تو وہ دعوت و اقامت دین کا کام جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. یہی بات جو ہے سورہ مائدہ کے چوتھے رکوع میں واضح کی گئی. اجتماعیت کی اہمیت آج بھی دیکھیں. ویسے آپ کو اور بھی بہت سے قرآن میں بھی آپ کو موقع ملے گی جہاں اجتماعیت کرنے گئے. حضرت تاجود اور جاجود کا واقعہ ہے. وہاں پر بھی دکھایا گیا کہ کس طرح جو ہے وہ ایک جماعت چھوٹی جماعت تھی لیکن وہ تمام کہا کہ اس میں کروڑی ہوئی تھی نظر کی پابند تھی اسے اللہ تعالیٰ نے بڑی جماعت پر جو ہے پتہ دی. تو ان شاء اللہ آگے بھی جو ہے اس کا مزید جو ہے روشنی کرے گی. یہاں بارہ اجتماعیت کی اہمیت احادیث کی روشنی. کچھ ہم نے آیات دیکھی اب کچھ جو ہے احادیث جس پہ اجتماعیت کے بارے میں ترتیب کی گئی. ترمذی شریف کی روایت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر جماعت کا انتظام کرنا لازم ہے. یعنی تمہیں جماعت اختیار کرنا تمہارے لیے لازم ہے اور یہ کہ جدا ہونے سے بچو. کل بے شک شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے نسبتاً زیادہ دور ہوتا ہے. جو کوئی جنت کی خوشبو کے حصول کا طلبگار ہو بس وہ جماعت کے ساتھ جڑا ہے. بہت ضروری ہے. وہ بار بار آ رہا ہے کہ اجتماعیت کا ماحول ہی کچھ اور ہے اور شیطان جو ہے وہ ان کے لیے اکیلے اکیلے افراد کو جو ہے انہیں قابو کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جب وہ جماعت کی صورت میں چلتے ہوتے ہیں تو شیطان کا زور ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. آگے ایک اور حدیث آ رہی ہے یہی مضمون مزید واضح ہوگا. جامع القدیر کی روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. جو کوئی جماعت سے علیحدہ ہوا وہ علیحدہ کر دیا گیا جہنم کی طرف. بڑے اچھے الفاظ ہیں اور یہ یاد بھی ہو جاتے ہیں جلدی. ید اللہ علی الجماع غمن شدہ قصہ اللہ. تو یہ بڑے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بھرپور انداز میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا وہ علیحدہ کر دیا گیا دولت کی طرف. انبیاء کرام کے لیے تو یہ معاملہ بالکل 100% تھا जिसने नबी की जमात को छोड़ दिया तो वो गया काम से, इसने तो फिर वो तो दौलत के अलावा और कोई ठिकाना उसके लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर आगे मजीद वजाहत होगी कि ये जमात जो है ये बहुत जरूरी है, इसकी तरतीब है, और ये जमात का मामला सिर्फ नबी की जमात तक ही नहीं है बल्कि असल में जमात के नाम जहाँ कहीं पर भी आए वो जमात मुस्लिमीन वहाँ से बना, और जमात मुस्लिमीन असल में पूरी मुसलमान उम्मत, पूरी मुसलमान उम्मत एक जमात है। लेकिन मसला ये है कि जमात वो होती है जिसका कोई अमीर होता है, और ये पूरी जो मुसलमान उम्मत थी इसका अमीर होता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब जमाने में कौन अमीर था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई और अमीर हो भी नहीं सकता, अल्लाह के नबी है। उसके बाद इमारत किसके पास आ गई? इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके बाद हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली, तो यह खुलफा राशिदीन का मामला था। उसके बाद बनू उमैया में जो है ये अब इमारत चलती, अब यह अंदाजा बात है कि वो खिलाफत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मलूकियत में तब्दील हो गई, बादशाह बन गए। लेकिन अभी तो होता ना, तमाम मुसलमान उसी की तरफ देखते थे, उसका उनको मानते थे, उसके पाबंद थे, उसने शरीयत को नाफिज किया हुआ था, शरीयत का अमल हो रहा था। हम वो खुद जाती हैसियत से बादशाह बन गए, कहा वो जो कि हुक्मरान थे, खलीफा थे, जिसका मामला ऐसा था कि वो जो है वो जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि तुम्हारे हुक्मरान के यानी कौम के हुक्मरान उनके खातिब हो, और उसकी बिल्कुल तस्वीर सहाबा के नाम से पेश की। हजरत उमर जब फलस्तीन पहुंचे रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो आधे ऊंट पर सवार है और वो नकीब पकड़े हुए जो है वो आ रहे, और एक ऊंट और एक खादे में खलीफा आ गए। खलीफा तीन कॉन्टिनेंट के खलीफा है, वरना आपको पता है एक मामूली सा गवर्नर निकलता है तो उसके आगे पीछे फौज होती है, और उसके जो है वो उसके साथ जो और लोग होते हैं, तो अकेला सफर करना वो भी इतना लंबा, और एक जो है खलीफा एक खादे में, तो ये उन्होंने करके दिखा। रातों को गश्त करते थे, आवाम का हाल मालूम करते थे, दिनों को जो है बैठ कर फैसले करते थे, उनके मकान उनके बहन क्या होते थे, वो झोपड़ियाँ होती थी जिनमें जिंदगी गुजारते थे, और कोई दरबान सामने नहीं होता, हर एक के लिए दरवाजे खुले थे, जो मर्जी दाखिल हो जाए, और जिन्हें का खुतबा दे रहे हैं और लोग खड़े हो गए, ना आपकी बात सुनेंगे ना मानेंगे। पहले ये बताएं ये कुर्ता कहाँ से बना है? आपका सब लंबा है, हम सबको जो कपड़ा मिला उसमें आप जैसे शख्स का कुर्ता नहीं चल सकता, ये तो लगता है कि आपने जल्दी मारी है, अपने लिए ज्यादा ले लिया, हमें कम दिया पहले हिसाब से। तब ये नहीं वहां कहा उन्होंने कि मैं जुमे का मुतला दे रहा हूँ, तुम क्यों खड़े हो गए, बाद में मुझसे पूछते नहीं। उसी वक्त बात साहब की साहबजादे को कहा खड़े हो जवाब दो, तो वो हजरत उमर के साहबजादे, उन्होंने जवाब दिया कि सबको एक एक चादर मिली, मैंने अपने हिस्से की चादर बजाज को दिया, इससे जो है उन्होंने कुर्ता दिया। फिर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो कि आप सुनेंगे भी मानेंगे, ठीक है अब आप कुर्ता दीजिए। तो ये अब आप तजर्बा करें, गवर्नर को कह सकते हैं उसकी तस्वीर के दौरान जरूर क्या तस्वीर नहीं तोड़ेंगे, पहले ये करो अच्छी खासी आपकी जो है वो काम कर देगा। तो ये जो खलीफा है तीन बड़े आजमों के नहीं, तो ये जनाब मामला था। उसने कहा गया कि जमात के साथ अच्छा करो, अब बच्चा ये बता रहा था कि जमात का मामला रहा अमीर है हमारा, लेकिन 1924 में जो है वो ये दरवाजा बंद कर दिया गया। वो जो खिलाफत का इंस्टीट्यूशन था, हम समझ चुके हैं तफ्तीश से माजी में कि किस तरह अंग्रेजों ने और कुछ अफसरों की नादानी ने जो है मामला किया। अल्लामा इकबाल ने हुआ कहा चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की तबाह, और अगला मिसरा क्या है सादगी मुस्लिम की देख गैरों की अशारी भी देख, अपने ही हाथों अपने ही मुसलमान भाइयों ने मुस्तफा कमाल बता तो इसने जो है खिलाफत का पूरा उसमें कुछ उनकी लहरों की चारबाजी भी थी अंग्रेजों की, उन्होंने कैसे ये लगाया कि अगर आज़ादी चाहिए तो खिलाफत को खत्म कर दो, चुनाचे खलीफा और उनके पूरे खानदान को जो है या तो खत्म कर दिया गया या उनमें से अक्सरियत को बदल कर दिया गया, खिलाफत के इंस्टीट्यूशन खत्म। मुसलमान मौजूद है लेकिन ये कैसी जमात है जिसका कोई अमीर ही नहीं, तो बगैर अमीर के जमात नहीं होती, वो तो आपके वो तो लेबर से बेहतर चल रहे इंसानों के लिए हजूम, एक हजूम आप कह सकते हैं लेकिन जमात नहीं हो सकती, जमात को अमीर के साथ, इसलिए आज मुसलमान बतौर खुद जो है जमात नहीं है बल्कि जमीयतें मुख्तलिफ जमीयतें और कौमियतें और उससे भी नीचे गिरते जा रहे हैं। उसको असलियत की लेबर पर वो तो जब एसपीएस पर आदमी उतर है तो प्याज की तरह हो जाता है, उसके तो प्याज में क्या होते छिलके ही छिलके होते, आप छिलके उठाते रहे वो उतरते रहेंगे, अंदर से छिलती नहीं थे। इसी तरह पहले हम जो है वो मक्की ग्राउंड में हमने बात किया, वो इराकी है, वो तुर्की है, ये पाकिस्तानी है और वो सऊदी है, और उसके बाद फिर अपने अपने मुल्क में हमने कर दिया, ये जो है वो फ्रंटियर का है, ये सिंध का है, ये वहाँ का है, फिर मजीद नीचे आ जाए फलाने कबीले का है, फलाने कबीले का है, तो इस तरह ये सिक्के उतरते रहेंगे, यहाँ तक कि आपने बिल्कुल अपने घर तक आ जाता है कि मैं और मेरे बच्चे बस बहन भाइयों को भी अलहदा छुपा कर, और फिर वो बच्चे भी नहीं सोचते वो भी अलहदा अलहदा हो जाता, तो ये तो फिर सिराजा बिखरता ही रहता, तो जमात है जो मिला कर। अब मसला क्या है कि जब मुसलमानों की एक इज्तमाइयत नहीं है, एक अमीर नहीं है, तो एक अमीर बनाने के लिए मुख्तलिफ लोग कोशिश करेंगे, तो उन्हें अपनी कोशिश एक इज्तमाई से करने करें। अब ये अलहदा अलहदा जमीयतें या जमातें हैं जो पूरे मुसलमान उम्मत को एक जमात बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, तो उसके लिए हर जमात का अपना अमीर होता है, उसे अमीर माना जाएगा और उसके साथ समाज का मामला रखा जाएगा। लेकिन ये जमातें जो अभी बहुत सारी नजर आ रही है खत्म हो जाएंगी जब पूरे मुसलमानों की एक जमात वजूद में आ जाएगी, जमात मुस्लिमीन जिसका एक अमीर होगा खलीफा, लेकिन जब तक वो खिलाफत कायम नहीं हो जाती उस वक्त तक उसे कायम करने की कोशिशों में ये छोटी छोटी जमातें हमारे सामने हैं। और इसलिए लोग कहते हैं कि ये क्यों नहीं एक हो जाते, एक क्यों उस वक्त होंगे जब ये खलीफा पर का मामला हो जाएगा, खिलाफत का इदारा बन जाएगा। इसी तरह जो है तिर्मिज़ी अबू दाऊद दोनों में ये रिवायत मौजूद है, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमा रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि तीन बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से एक मुसलमान का दिल निफाक में मुबतला नहीं होता। और ये हमने समझ लिया कि मुसलमान के लिए सबसे बड़ा खतरा किस चीज़ का है, एक तो शिर्क का है, शिर्क के बाद अगर है तो निफाक का है, ये अजीम दौलत जो ईमान हकीकी की है इससे महरूम ही ना हो। इसी तरह अमल का फायदा, अब वो तीन चीज़ें अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि तीन बातें ऐसी हैं जो एक मुसलमान को निफाक से बचाए रहती हैं। तीन चीज़ें क्या है, अमल का फायदा अल्लाह के लिए होना, यानी महज अल्लाह के लिए जो है काम के लिए, के लिए उम्र काम लिखवा दें, मामला ये कि इन्हें टारगेट दिया गया है रमजान में तैयारी का, मैं इनका मैं जाके इन्हें कह देता हूँ, अभी शोर हो रहा है क्या, उस तरफ हो रहा है, अब बिल्कुल वो तैयार नहीं है जनाब, जो ठेकेदार हैं उन्हें जिनके टाइम बहुत कम है उन्हें ये कहा गया कि रमजान से पहले दें, तो उन्होंने पहले से ये कहा है कि हमने एक एक बजे तक काम ही नहीं होता और यहाँ नीचे कासू लगे रहते हैं, तो हमारी जो सूरत थी उन्होंने हमें पेमेंट कर दिया ठीक है आप काम करें, तो फिर भी इनकलाबी तौर से कल भी हमने जाके रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने माना नहीं, तो कह रहे हैं बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर रमजान के लिए तैयार नहीं हो सके, जरा कॉन्सेंट्रेट करें इंशाल्लाह, अब तो आपको नजर भी आ रहा है अल्लाह ताला आसानी करे। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि तीन काम ऐसे हैं, तीन बातें ऐसी हैं जो इंसान को एक मुसलमान के दिल को निफाक से जो है बचाए रखती हैं। पहली चीज़ क्या है, अमल का फालिस अल्लाह के लिए होना। नंबर दो, जिम्मेदार हजरात के साथ खैर खुआई और वफादारी करना, क्या मुराद, जो अमीर हो जो जिसकी इताअत का आदमी ने वादा किया हुआ है उनके साथ जो है वो खैर खुआई और जो है वो उनकी वफादारी करना, उन्हें धोखा ना देना। और तीसरी बात बता रहे जमात के साथ चिमटे रहना, और आगे फरमाया बेशक जमात वालों की दुआएं उन्हें महसूस रखती हैं, जमात में जब लोग होते हैं तो एक दूसरे से तस्वीर ताल्लुक हो जाता है, जैसे इस बार आप क्लासरूम में हैं तो जो आपके साथ जो लोग अपने 10 महीने साथ रहे उनसे खसूसी ताल्लुक हो जाता है, जो बाहर किसी चलते फिरते थे वो ताल्लुक नहीं होगा। इसी तरह जब एक जमात में एक सोच एक फिक्र में लोग आपस में मिलते हैं तो उनका एक खास ताल्लुक आपस में हो जाता है, तो वो एक दूसरे के लिए भी दुआएं भी होती और एक दूसरे का एहसास भी होता, तो ये जो दुआएँ हैं वो जो है वो निफाक से बचाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह मुस्नद अहमद की रिवायत है, हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दावी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक शैतान इंसान के लिए उसी तरह का भेड़िया जैसे बकरियों के लिए भेड़िया हो, वह ऐसी बकरी को पकड़ता है जो रिवर से दूर होती है या किनारे किनारे चलती है, तुम बचो बाहर की घाटी हो यानी गुमराही से और जमात और आवाम के साथ। तो बड़ी प्यारी मिसाल अल्लाह के रसूल ने दे दी, भेड़िया कैसे फिदा कर है। हम तो पता है या तो तना बकरी को ढूंढता है, अकेली बकरी होते दबोच देता है, या फिर ऐसी बकरियाँ जो है पकड़ी जाती है जो किनारे किनारे पर जो रेवर के दरमियान में होती है, जो कहीं के साथ होती है उन तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए कहा जमात के साथ है और जमाती जिंदगी भी जो साथी गुजारे होते हैं उनसे भी कहा जाता है कि अब इसमें आओ बीच में आओ, ऐसे नहीं कि किनारे किनारे चल रहे हो कभी आए कभी नहीं आए, तो इसमें भी शैतान के वार का शिकार हो जाए। तो बड़ी अच्छी तफसील से अल्लाह के रसूल ने बता दिया हम सबका मुशाहिदा। तो ये शैतान भी इसी तरह हमारा दुश्मन है, हमारी मीडिया इससे बचना है तो आप भी कोशिश करें कि दरमियान दरमियान चले और जो है पूरे जो लेबर है पूरा जो इंसानों की जमात है उस जमात में जो है अच्छे मुकाम पर हो दरमियान में, ऐसा ना हो कि किनारे किनारे और जो है जान बचाने वाला मामला है। अच्छी जनाब बंदर जब आला हदीस में मुसलमानों को अल जमात के साथ रहने की तलकीन की गई, अल जमात से मुराद हल लगाया हुआ, तो ये नकरा नहीं है कोई जमात नहीं है, दस दस जमात है, तो उससे मुराद क्या है पूरी की पूरी उम्मत है मुस्लिम, जबकि वो एक जमीन की क़यादत में मुस्तैद है। अलबत्ता बहालत में मौजूदा दुनिया में अल जमात मौजूद ही नहीं और मुसलमान मुख्तलिफ कौमियतों में घटे हुए, लिहाजा इस सूरत हाल में बंदर जब आला आदीब पर अमल का तरीका यह है कि ऐसी जमात में शामिल हुआ जाए जो फिर से अल जमात कायम करने की कोशिश करे, और अल जमात जब कायम होगी तो तमाम मुसलमान उस जमात में होंगे, अभी जमीयतें छोटे छोटे ग्रोह हैं जो कोशिश करें। अलबत्ता ये है कि इन जमातों की कोशिशें बहुत उसमें काफ़ी जो है मुख्तलिफ अंदाज हैं, अब बहुत कम जमातें हैं जो अल जमात की कोशिश करें, वरना ज़्यादातर जमीयतें जो है मुख्तलिफ मजहबी इस्लाही कामों में लगी हुई, बाद लोग चाहते हैं कि मुसलमान को चालू जानती है काम करें, बाद लोगों ने दायरा किया कि जो मुसलमान गरीब और मिस्किन लोग हैं उनको माली इमदाद करें, बाद लोग चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ने के पाबंद हो जाए, तो ये मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन हमें जो है फिर सोच कर ऐसी जमातों को इख्तियार करना चाहिए जिनके पास दीन का मुकम्मल तसव्वुर है तो वो इस जमात के लिए कोशिश करें, और एक दफा जमात जो है वो वजूद में आ जाए फिर क्या करना चाहिए फिर उसमें शामिल होना चाहिए, फिर जमीयतों से चिपके नहीं रहना चाहिए, जब भी अल जमात वजूद में आएगी तो ये जो छोटे छोटे ग्रोह हैं नहीं उसमें दम होना चाहिए, फिर अपनी देर इसकी अगर मस्जिद बनाएंगे तो अल जमात से अलहदा हो जाएंगे, ठीक है जनाब, जब तक अल जमात नहीं है तो अलहदा कोशिश करें इस बड़ी जमात। अब ये कि इज्तमाइयत के असास क्या, ये जो लोग मिलकर एक जमात बनेंगे तो जमात किस ग्राउंड पर बने उसकी हैसियत क्या होगी उसकी जगह क्या होगी, तो दो तरीके हैं दुनिया में जमात करने, एक कहलाता है दस्तूरी तरीका, दूसरा कहलाता है सबकी बहस की बुनियाद पर जमात करना, दोनों जायज है। पहली सुन ये नहीं कि ये दोनों इनमें से एक जायज है एक नाजायज है, एक हलाल है दूसरा हराम है, ऐसा नहीं है, दोनों हलाल हैं दोनों जायज है, थोड़ा सा तो फर्क जो है वो है फजीलत का अफजल होने का, तो वो फर्क समझने दस्तूरी चीज क्या होती है, दस्तूर की जगह कॉन्स्टिट्यूशन कवायद और जवाबित, तो दस्तूरी तरीका क्या होता है कि उसमें पहले कवायद और जवाबित लिखे जाते हैं, फिर जो वादा किया जाता है वो किसी शख्स की ताक का नहीं किया जाता, वो उस कागज का वादा होता है, इसमें जो रूल लिखे इसकी पाबंदी करेगा और जो ये ऐड कर लेता है वो दस्तूर के लिहाज से उस जमात में शामिल होता है, तो वादा किस चीज़ का किया जाता है उस कवायद और जवाबित का, उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने का, उस कवायद और जवाबित की पाबंदी का जो शर्त है जमात में दाखिल होगी, ठीक है, और पेपर पे साइन करते ही जो है आपकी जो है वो उसमें शमूलियत हो जाती है जमात, जबकि शख्सी बैठ में क्या होता है वहां पर एक शख्सियत होती है, एक शख्स होता है, एक इंसान होता है जिसकी इताअत की का वादा किया जाता है, आपसे वादा करता है कि मैं इस पर की इताअत करूंगा, इसकी बात सुनूंगा और मानूंगा, आपसे मालूम के अंदर है इसका हर वो हुक्म मानूंगा जो कुरान और सुन्नत के अंदर अंदर हो, ठीक है जी, तो ये कहलाती है शक्ति बैत, तो इसी तरह समझ गया दस्तूरी बैत क्या है शक्ति बैत, दस्तूरी बैत कागज की होती है और उन कवायद और जवाबित की होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की होती है जो उस पर लिखा हुआ, जबकि शक्ति बैत उस पर की होती है जिससे आदमी शक्तियत की होती है जिससे वादा कर कि जो तुम कहोगे मानूंगा, और तुम्हारी बात सुनूंगा भी और तुम्हारी कलमा बजारी भी करूंगा, शर्त ठीक है कि वो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ ना होगी तुम्हारी बात। चलिए इसके अंदर जो भी एक बात होंगे बात। अब मकसद क्या होता है दोनों का? अब ये अब मजीद जो तर्क आ रहे हुई है, पहला तर्क इसमें देखेंगे हकूक का हसूल इतना, जिसका एहसास बैठ वक्त लोगों को होता है, अमूमन दस्तूरी मामला इसी तरह होता है। कई लोगों को एक एहसास होता है कि ये हमारा कहियात नहीं हो रहा, यह मार्के में ये खराबी है। बहुत सारे लोगों को उसका एहसास होता है कि ये खराब है मार्के में, इसे सही कर। अब ऐसे लोग जुड़ जाते हैं और वो एक जमात बनाते हैं, वो कहलाती है दस्तूरी, ठीक है जमात। इसका नजम सीधा डाला होता है, सीधा डाला इस्लामी में कि वो जो कागज का मामला है वह सही तक जाता है। जब भी कोई हुक्म आता है तो देखा जाता है कि ये जो फवायद और जवाबित है इनके मुताबिक है या नहीं। हर हुक्म नहीं माना जाएगा, सिर्फ वो कवायद और जवाबित के मुताबिक ही बात करें। फिर अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वहाँ कोई अहम दीनी जिम्मेदारी है जिसके दो काफिल होते हैं, एक शख्स को उसका एहसास होता है, वो खड़े होकर आवाज लगाते हैं, लोगों को मुतवज्जा करता है कि देखो तुम्हारी तवज्जो इधर नहीं है, ये मसला है और ये बहुत अहम मसला है, इसको समझो और इसकी तरफ आओ। अब उनका वही अंदाज होता है, मन अंतार ही अल्लाह, कौन है मेरा मददगार ऐसा क्यों, और फिर लोग जमा हो जाते। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जगह बहुत सारे लोगों के एहसास है, वो सब मिलकर कवायद जवाब बनाते और एक जमात को इख्तियार करते, और फिर अपने में से एक को कहते हुए तुम सदर, तुम सदर बन जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरी तरफ शक्ति बैठ में, यहाँ एक इंसान है जिसे एहसास है और वो लोगों को मुतवज्जा करते हैं, ये मामला अहम है। अब ये नहीं होता कि वो सब मिलकर कवायद जवाब बनाए और फिर किसी को सदर बनाए। अब ये दावत देने वाला मुतवज्जा करने वाला आपसे आप अमीर है, वो बुला रहे हुए अमीर है और उसके हाथ पर लोग बैठ करें किसी कवायद जवाब पर बैठ नहीं करें, ठीक है जी। इसका नजम जो है मजबूत होता है, सख्त होता है, क्योंकि आप एक पर की बात है, वो जो कह रहे हैं आपसे मान वहां तो कुछ कवायद देना आप पहले आदमी तोड़ देता है, ये रूल है, ये कानून नहीं है, मैंने इख्तियार कर लिया। अब यहाँ पर जो है कुछ लिखता हुआ उस तरह नहीं, अब जो वो शख्स कह देगा आपने मानना होगा तो ये ज्यादा सख्ती है। वो तो कभी भी बुला दे कि बस आ जाओ मैं तुम ये काम करो, आवाज ये नहीं कह सकती मैं ये नहीं करूँ, जब तक कि वो शरीयत के खिलाफ ना, वो कह रहे आपसे के दरिया बिछाओ। अब आप कह रहे मैं तो बहुत अल्लामा हूँ, मैं तो लेक्चर देता हूँ, मैं दरिया क्यों बिछाऊ, तुम क्यों नहीं कह सकते बात, आपने बात माननी माननी हो अमीर, ठीक है। तो ये नजम होता है जरा सा, ये इतिहास से मजबूत है क्योंकि एक आदमी के हाथ में आपने अपना मामला दे दिया है, जो कहोगे मानेंगे। अब इसकी मजीद जो डिफरेंस है वो ये कि दस्तूरी जो तरीका है जमात साजी का, इसकी मिसाल कुरान हदीस असलाफ सलफ़े सालेहीन और इस तरह जो हमारे असलाफ हैं उनमें से कहीं से नहीं मिलता। ये तरीका जो है वो शुरू हुआ है 19वीं सेंचुरी में और वहीं से फिर मुसलमानों में आया है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ जायज़ है हलाल, लेकिन जो है कुरान में तलब नहीं है, हदीस में जो है कोई आपको इशारा नहीं है, हमारे इस्लाम में जो है कोई मिसाल है। जबकि दूसरा जो सख्ती बैठ का तरीका, ये कुरान से साबित है, आदीस से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका रहा है, खुलफाए राशिदीन से इसी तरीके से अपनी बैठ ली है, खलीफा जो है किसी दस्तूर की बैठ नहीं लेता था, अपनी बैठ लेता था जो है समाओ का। अच्छे जनाब, अब ये है कि हमने इसी साहब को बुलाया है यहाँ पे रुमान भाई को आगे, तो एक लेक्चर आपका रखा है जिसका ताल्लुक है कि मकसद ज़िंदगी क्या हो, मकसद को कैसे अचीव करते हैं, क्योंकि उन्हें आगे अपना बाकी जाना भी है, जॉब भी करते हैं, तो उन्हें ये एक घंटे का स्लॉट दे देते हैं, फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। मेरा ये यहाँ समझिए कि बैस का तरीका कुरान से साबित है, आदि से साबित है, साहबा कराम ने यही तरीका इख्तियार किया, हर खलीफा ने किसी दस्तूर की बैठ नहीं ली, अपनी शक्ति इतिहास की बैठ ली। इसी तरह से बनू मैया बनू बाद के दौर में भी जो खलीफा रहे उनकी भी शक्ति बैठ होती है, यहाँ तक कि 19वीं सदी में भी आपको जो है शक्ति बैठी के जो है हिसाब से मिलेगी तरीके, जैसे तरीके कही दे पाकिस्तान में जो है या इंडिया गए सब कॉन्फिडेंट में उठी, वो भी शक्ति बैठ पर, अखबार मुस्लिम इनकी जमात शादी शक्ति बैठ पर, सैयद और उसी की तहरीक ये भी जो है शक्ति बैठ पर, तो ये बैठ जो है वो आता रहा है, सिवाय उसके कि अंग्रेजों ने जब से मामला किया उसके बाद से जो है पूरी बहस का आगाज जैसे यहाँ देख करते बाकी हिस्सा जो है हम अपनी तबाइयत को तो समझ लिया अगर इसे जो है समझते हैं कि छत्तीस बहस का मजीद और बिल्कुल पहले लेक्चर में सब क्या था
मजदूर कहते हैं वो बात के तीन दरिंग रास्ते